नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। आतंकवाद और माओवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। कहा, दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य के सभी विद्यालयों में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। और लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी तत्व, उनकी सरकार कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चलती है। आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है।
विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए इसका मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब पूर्वोत्तर को केवल सीमांत क्षेत्र कहा जाता था।
ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है।
श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को लेकर उत्साह का माहौल है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव हमले का जवाब है और आज दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और खुफिया एजेंसियों की अचूक सूचना तथा सशस्त्र बलों द्वारा घातक कार्रवाई के कारण यह संभव हुआ है। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ और सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में महान वीरता और रक्षा की सच्ची शक्ति का प्रदर्शन किया है।
ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया।
श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा और गौरवमयी सीमा सुरक्षा बल है।
बीएसएफ ने आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी बहुत अच्छे से हिस्सा भी लिया है और परिणामों को भी प्राप्त किया है। चाहे चुनाव कराना हो, चाहे कोरोना हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद का सामना करना हो, चाहे उत्तर पूर्व में शांति की स्थापना करनी हो, बीएसएफ ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया है।
गृहमंत्री ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी भारत की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना की। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य के सभी विद्यालयों में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को हर माह प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा उनकी माताओं को भी 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के प्रति बच्चों और अभिभावकों में जागरूकता और उत्साह बढ़ाना है। शिक्षा मंत्री ने आज अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में आयोजित सम्मान समारोह में बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले जिले के विभिन्न विद्यालयों के 42 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले के 1000 छात्र छात्राओं को भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी विद्यालयों को आधुनिक बनाना है। शिक्षा मंत्री ने इंटर कॉलेज में जिले के पहले आधुनिक पुस्तकालय का लोकार्पण भी किया। यहां 1,00,000 पुस्तकों को रखने की क्षमता निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय से छात्र छात्राओं को, खासकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इस सुविधा से न केवल पठन पाठन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रामबाड़ा गरुणचट्टी पुराने मार्ग के अवशेष कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। विभागीय सचिव गौरीकुंड से पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने पैदल मार्ग पर चल रहे सुधारीकरण कार्यों के बारे में जानकारी ली, साथ ही मार्ग पर जगह जगह यात्री सुविधाओं की बेहतरी के निर्देश भी दिए। डॉ. पांडे ने प्राचीन रामबाड़ा गरुणचट्टी पैदल मार्ग के शेष कार्यों को पूरा करने, रेलिंग और पत्थर बिछाने का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को आवाजाही करने में आसानी हो सके। उन्होंने केदारनाथ में मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम घाट का निरीक्षण भी किया और दोनों नदियों को चैनलाइज करने के निर्देश दिए। सचिव ने केदारनाथ में पुल, अराइवल प्लाजा, मंदाकिनी आस्था पथ, अस्पताल भवन, प्रशासनिक भवन और सिविक सेंटर भवन का जायजा भी लिया। पौड़ी गढ़वाल में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध खनन विभाग की ओर से चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत अब तक 29 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व वसूली की जा चुकी है। जिला खनन अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि विभाग ने 29 करोड़ 62 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया, जिसमें विभाग ने 41 मामलों में कठोर कार्रवाई करते हुए अवैध खनन और भंडारण पर भी शिकंजा कसा। इसके अलावा 154 वाहनों पर चालान की कार्रवाई की गई।
अवैध खनन और परिवहन भंडारण में हमारे तरह निरंतर कार्रवाई होती है। पिछले 2024 के वित्तीय वर्ष की बात करें तो उसमें हमारे द्वारा 195 प्रकरणों पर कुल कार्रवाई की गई, जिसमें टोटल राजस्व हमारा 29 करोड़ 62 का हुआ है। और अभी हमारे द्वारा नए वित्तीय वर्ष में भी निरंतर कार्रवाई हो रही है और एक सप्ताह के भीतर हमारे द्वारा एक हॉट मिक्स प्लांट और एक मोबाइल स्ट्रॉन्ग प्रेशर प्लांट जो अवैध रूप से संचालित होने की जिनकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी उनपे सीज करते हुए उनकी अधिनियम कार्यवाही भी जिलाधिकारी को आख्या भेजी गई है।
रुद्रप्रयाग जिले में अनाथ, परित्यक्त और निराश्रित बच्चों के लिए राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का शुभारंभ हो गया है। विकास भवन में आज अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने इसका शुभारंभ किया। निराश्रित बच्चों के लिए गठित जिला निरीक्षण समिति ने बताया कि जिले में अनाथ अथवा निराश्रित बच्चों की जानकारी मिलने पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण के प्रबंधक मोबाइल नंबर 7060235048 या चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर कभी भी संपर्क किया जा सकता है। संपर्क करते ही निराश्रित बच्चों को राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण आश्रय प्रदान करेगा, साथ ही उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद दिए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। आतंकवाद और माओवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की भूमिका की सराहना की, कहा दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा कर रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य के सभी विद्यालयों में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की और लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।